नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक केंद्र सूरत में प्रातः श्रीमद भागवत के सत्संग में आपका स्वागत है। श्रीमद भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पांचवें अध्याय का आज आरंभ करेंगे। 3, 4, 5, 6 और 7वें अध्याय के पहले 8-10 श्लोक ये है नारद व्यास संवाद। कल चौथे अध्याय में हमने व्यास देव को कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए वेदों को आसान सरल एक को चार में किया, फिर उनके लिए उनके और आसान समझाने के लिए 17 पुराण उपनिषद और वेदांत सूत्र, और फिर जो वेद पढ़ नहीं पाते उनके लिए महाभारत पंचम वेद का प्रकट्य किया। और उसके बाद भी कहते हैं कि मैं ही संतुष्ट नहीं हूं स्वयं हृदय में, तो क्या चीज रह गई है जो अभी तक मैंने ठीक तरह से वर्णन नहीं किया है। इतना सारा दिव्य साहित्य लिटरेचर मैंने दिया है, फिर भी कौन सी मुझमें कमी रह गई है, और स्वयं ही उस कमी का अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे लगता है कि मैंने भगवान की गुण रूप लीला धाम का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। और जैसे ही ऐसे चिंतन कर रहे थे अपने अंदर कुछ कमी का, उस वक्त उनके गुरुदेव नारद वहां पधारे हैं और सहसा उन्होंने उठ के नारद का स्वागत किया है। यहां चौथा अध्याय पूरा होता है। अब पांचवें अध्याय में नारद जी का उपदेश व्यास देव को भागवत के विषय में, ये इस अध्याय का शीर्ष है। आइए पहले श्लोक का श्रवण करते हैं, क्योंकि अब नारद जी आए हैं, व्यास देव ने उनका स्वागत किया है, उनकी पूजा की है, उनको आसन दिया है, जो भी पूजा की पद्धति है वो सारी पाद्य अर्घ्य आचमन्य माल्या आसन दे दिया। अब जब ये दो, एक आया है उसका स्वागत हो रहा है, दूसरा स्वागत कर रहा है, तो बोल कोई नहीं रहा है, तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं वहां क्या हो रहा है। तो पहला श्लोक सूत गोस्वामी का है, आइए पढ़े। सूत वाच अथ तम सुखम आसीन उपासीनम ब्रद शर्वाः देवर्षि प्राह विप्ररिषे वीणा पाणिः सम्यम् निव। अथ तम सुख, हाँ पढ़िए पढ़िए। सूत उवाच अथ तम सुखम आसीन उपासीनम ब्रद शर्वाः देवर्षि प्राह विप्ररिषे वीणा पाणि सम्यन्निव। अथ तम सुखम आसीन देवर्षि प्राह विप्ररिषे वीणा पाणि सम्यन्निव। सूत गोस्वामी कहते हैं ऐसे जब तम व्यास देव को सुख, नारद जी को सुखम आसीनम सुख से आसन दिया और बैठ गया। बहुत बड़ा विशेष शब्द सुखम आसीनम, किसी से कुछ पूछना हो उससे पहले उसको सुख से बिठाना तो चाहिए। यहां तो चलते रोड के ऊपर ही खड़ा करके कहते हैं इसका क्या अर्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। असल में जब तक एक मर्यादा से पूछने की भी एक मर्यादा होती है, आसन के ऊपर बैठे और जब वो सुख से प्रसन्न चित्त बैठ गए तब बातचीत हुई। अथ तम सुखम आसीनम, वो जब सुख से आसन के ऊपर विराजमान हो गए कौन, नारद जी, तो कहा उपासीनम। उप का मतलब नजदीक, आसीनम का मतलब अपना आसन लगाया, व्यासदेव उनके पास बैठ गए। इसे उपासना कहते हैं पूजा को, जब पूजा करते हैं तो भगवान के साथ नजदीक जाके पूजा करेंगे, अगरबत्ती है कि धूप देना है तो पास में जाना पड़ेगा, तो उपासीन का मतलब पास में जाना। तो पास में नारद जी उनके चरणों के पास बैठ गए। किसके पास बैठे, वृद्ध शर्वाह। वैसे वृद्ध शर्वा का श्रील प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है हाईली रेस्पेक्टेड, वृद्ध सर्वहा, जिसकी सब सुने, महान वृद्ध का मतलब महान, सर्वहा का मतलब जिसकी सब सुनते हैं अथवा जिसका सब आदर करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सन्मान्य है, तो सन्मान्य व्यक्ति कौन के चरणों में बैठ गए, वो कौन था सन्मान्य? देव ऋषि। नारद को देव ऋषि कहते हैं। और दूसरा विशेषण है नारद का, वीणा पाणी, जिनके हाथ में वीणा है, पाणी का मतलब हाथ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को चक्र पाणी कहते हैं, भगवान रामचंद्र को सारंग पाणी कहते हैं, शंकर जी को शूल पाणी कहते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल होता है, शूल पाणी, शूल पाणी, सारंग पाणी, चक्र पाणी, और यहां वीणा पाणी। वीणा पाणी प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं, वीणा पाणी सरस्वती को भी कहते हैं, सरस्वती के हाथ में वीणा होती है, सरस्वती वीणा पाणी कहलाती है, और सरस्वती ज्ञान प्रदान करती है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्राय सरस्वती से लोग भौतिक ज्ञान के लिए ही प्रार्थना करते हैं, तो हमारा नारद जी भी वीणा पाणी सरस्वती ही है, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान देते हैं। और फिर प्रभुपाद उस दिन कहते हैं, और हमारे गुरुदेव भी सरस्वती हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो वीणा पाणी का उन्होंने भाव निकाला, वीणा पाणी का मतलब सरस्वती, और वीणा पाणी का मतलब जो ज्ञान देने वाला हो, और यहां नारद भी वीणा पाणी है, और उस वीणा पाणी, अच्छा वीणा पाणी ने प्राह बोला, किसने बोला? वीणा पाणी ने बोला, किसको बोला? विप्र ऋषि ही, व्यास देव के लिए शब्द विप्र ऋषि, नारद है देव ऋषि और व्यास है विप्र ऋषि। विप्र कहते हैं वेदज्ञ ब्राह्मण को, वेदज्ञ ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। ऐसे चौथे स्कंद भागवत में तीन जन्म बताए गए हैं, प्रचेताओं के प्रसंग में नारद जी कहते हैं, एक जन्म माता पिता से होता है, वो तो शरीर का जन्म है, शूकर जन्म है, दूसरा गुरु और शास्त्र से होता है, ये ब्राह्मण हो गया, इसके बाद वेद पढ़ता है तो विप्र बनता है, तो विप्र तीसरा जन्म है असल में। तो विप्र ऋषि, जितने भी वेदज्ञ ब्राह्मण है उनका ऋषि वेद व्यास उसको बोला, बोला कैसे बोला? डांटते हुए बोला, गुरु जी है, बोला नहीं, सम्यन एव, मुस्कुराते हुए, सम्यन का मतलब सीमित, मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए बोले। तो अब ऐसे है कि नारद जी आए हैं, उनका पूजा किया है, आदर दिया है, आसन पे बिठाया है, और जब वो प्रसन्नचित बैठ गए तो उनके चरणों में व्यास देव बैठ गए हैं, और तब वीणा पाणी देव ऋषि नारद ने मुस्कुराते हुए व्यास देव अपने शिष्य जो विप्र ऋषि है उसको संबोधन किया। ये श्लोक का अर्थ हुआ, ठीक है, ये श्लोक का भाव है और अर्थ है। श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में सिर्फ एक ही शब्द के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं, मुस्कुराते हुए क्यों देखा नारद जी ने। और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को जब पहली बार देखते हैं तो प्रसन्न वहां भी मुस्कुराते हुए देखते हैं, और उस वक्त अर्जुन की क्या हालत थी? बहुत बड़े विषाद में था और भगवान मुस्कुरा रहे थे। यहां व्यास देव भी परेशान है और नारद मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने के पीछे भाव प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नारद जी समझ रहे थे कि व्यास देव की जो कमी है उसका कारण वो जानते थे, इसलिए मुस्कुरा रहे थे, और ये भी जानते थे कि इसको मालूम है फिर भी ये चिंता में है, इसलिए मुस्कुरा रहे थे। ऐसा होता है कभी किसी से प्रश्न पूछते हैं, हम जानते हैं उसको मालूम है लेकिन वो नहीं बताता है, तो जरा मुस्कुराता है कि मालूम है फिर भी नहीं बता रहा है, ऐसे लगता है, तो मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। तो अब दूसरा श्लोक बोल रहे हैं नारद जी। नारद वाच पाराशर्य महाभागा भवत कचनात्मना परितुष्यति शरीरा आत्मा मानस एव वा। नारद ने पूछा, हे पाराशर महाभाग, पाराशर्य जैसे कौनते है, कुंती का पुत्र कौनते है, वासुदेवाय, वासुदेव का पुत्र वासुदेवाय, ऐसे पाराशर का पुत्र पाराशर्य, पाराशर के पुत्र वेदव्यास पाराशर ऋषि का पुत्र है। पाराशर्य महाभाग, अरे आपका इतना बड़ा कुल, महान महर्षि के संतान हो, महाभाग्यशाली हो, और फिर कहते हैं भवत कचिद आत्मना परितुष्यते, क्या आप अपने मन में अच्छी तरह से संतुष्ट हो, इतना बड़ा आपको भाग्यशाली हो, परंपरा ऐसी मिली, पराशर के पुत्र हो, सब आपको अध्ययन किया हुआ है, मालूम है, क्या आप मन में संतुष्ट हो। और फिर कहते हैं शरीर आत्मा मानस एव वा, आप मन में क्या इस बात में संतुष्ट हो कि आत्म साक्षात्कार में शरीर और मन को ही मुख्य माना जाता है, यही बात आपने समझी है, इसी को ही आपने समझा है संतुष्टि का कारण, या शरीर का मतलब शरीर और मन, मन का आत्मा मानस, आत्मा का मतलब आत्म साक्षात्कार का, क्या शरीर और मन को ही आपने सब कुछ समझ लिया है आत्म साक्षात्कार का साधन, इसी में आप संतुष्ट हैं। ये एक प्रकार का समझदार आदमी के लिए कटाक्ष की भाषा है कि आप विप्र ऋषि हो, वेदों को जानते हो, और आप शरीर और आत्मा को ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानते हो। आत्मा रक्षते, आत्मा की रक्षा का ध्यान नहीं आपको रहा, और यही बात भगवद गीता में अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, तुम शरीरों के लिए रो रहे हो, तुम्हें आत्मा का ध्यान नहीं है, डूबते हुए आदमी के कोट को बचाने की परेशानी कर रहे हो, आदमी डूब रहा है उसकी चिंता नहीं है, तू शरीरों के चिंता कर रहे हो, शरीर और मन के ही सुख के लिए आपने सारा वर्णन कर दिया। तो आपकी संतुष्टि इसलिए, क्या आत्म साक्षात्कार मन और शरीर के स्तर के ऊपर होता है, ये इसका भाव है कि हे पाराशर के पुत्र, आप कितने भाग्यशाली हो, क्या आपकी संतुष्टि केवल मन और शरीर को ही इस आत्म साक्षात्कार का साधन समझ लिया है आपने। देखिए क्या लिखा है, हे व्यासदेव को कहा, हे पराशर के पुत्र, आप संतुष्ट हैं, शरीर और मन को आत्म साक्षात्कार का साधन समझ के आप क्या संतुष्ट हैं, अब इसमें श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है कि जो व्यास देव की गिलानी थी, अपनी कमी को महसूस कर रहा था, इतना बड़ा विप्र वेदज्ञ होकर आत्म साक्षात्कार का साधन मन और शरीर के स्तर के ऊपर इतना ज्यादा बताया है, तो इसलिए उनकी जो कमी है वो ये कारण है कि उन्होंने आत्मा के संतुष्टि का साधन इतना ज्यादा नहीं बताया है। इसको ऐसे कहा जाए कि शरीर के लिए तो बहुत सुंदर 56 भोज भोग परोस दे, मन के लिए भी बहुत अच्छा काव्य उपन्यास ऐसा कुछ दे दे, लेकिन आत्मा के लिए कोई भोजन की व्यवस्था करे ही नहीं तो लाभ क्या। तो आपने अपने शास्त्रों के अंदर प्रायः शरीर का सुख स्वर्ग में जाके मिलेगा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, या मन को ध्यान लगा के योग में ब्रह्म में लीन हो जाना है, यही दो बातों के ऊपर ध्यान दिया है, क्या आपने आत्मा के रमण करने के लिए कोई साधन एक जगह पे बताया है क्या। इसका भाव ये होगा कि आपने शरीर को सुख कहां मिलता है, स्वर्ग में, और मन को कुसुख कहां मिलता है, जब ध्यान करके ब्रह्म में लीन होता है, तो क्या इन दोनों बातों के ऊपर आपने बहुत ज्यादा बल दे दिया है, और आपने असल में जो आत्मा का आनंद मय स्वरूप है उसके प्रति आपने ध्यान नहीं दिया है। तो पहला मुस्कुरा के कहते हैं कि आपने शरीर और आत्मा को आत्म साक्षात्कार का साधन माना है, यही आपके असल में कमी का कारण है, या डिस्पोंडेंसी के लिए क्या लिखा है या हिंदी में, हाँ क्या शब्द लिखा है, असंतुष्टि असंतुष्टि। अब आगे नारद जी बोल रहे हैं जिज्ञास्तम सुसंपनम अपीते महद अद्भुतम कृत्वां भार्त्वं यस्त्वं सर्व अर्थ परिब्रह्मतम। अब व्यासदेव कहते हैं जिज्ञासु तुम, आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी थी, आप अच्छे जिज्ञासु हैं, आप की जिज्ञासा बहुत अच्छी थी। सुसंपन, संपन्न का मतलब सब कुछ जानना, संपन्न है का मतलब किसमें संपन्न है व्यासदेव, एक विप्र की संपत्ति क्या है वेद, भाई विप्र की संपत्ति है दिव्य ज्ञान, और सुसंपन्न का मतलब आपके पास कोई ज्ञान की कमी नहीं है, आप तो विप्र की संपत्ति दिव्य ज्ञान जो वेदों का है उससे परिपूर्ण है। सुसंपन्न, सुसंपन्न का प्रभुपाद जी ने वेल वर्स्ट, अच्छी तरह से सब कुछ जानते हो, वेल स्व के लिए डाला और संपन्न के लिए सब कुछ आपके पास, आपकी जिज्ञासा अच्छी, आपके शास्त्रों का अध्ययन बहुत अच्छा है, आगे वाले श्लोक में अध्ययन आएगा। यहां सुसंपन्न, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपका पिताजी पराशर इसका मतलब आपको ऋषियों के कुल में जन्म मिला, ये आपकी संपन्ना, और उसके बाद विशेष रूप से आज कह रहे अपीते महद अद्भुतम कृतम भारतम, और आपने इतना अद्भुत महाभारत जैसे काव्य के महान इतिहास की रचना कर दी, ये तो बहुत बड़ा आपकी सुसंपन्नता है के वेदों को भी कहानियों के अंदर महाभारत में आपने वर्णित कर लिया, जो सर्व अर्थ वो सामान्य सब लोगों के लिए परिभ्रंशम, उसके लिए आपने बहुत विस्तार से उसको अच्छी तरह से समझा दिया, बहुत अच्छा काम किया है आपने, आप की जिज्ञासा में कोई कमी नहीं है, आपकी संपन्नता में कोई कमी नहीं, आप संपन्न हो, आपको ज्ञान पूरा है, आप जानते सब हो, आपके पास सब चीजें ठीक पड़ी, आपने महाभारत जैसे अति अद्भुत इस काव्य के ग्रंथ को लिखा है। श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में सिर्फ एक शब्द है, सुसंपन्न और महाभारत की रचिता के होने के बाद जो असंतुष्टि व्यास देव की है वो ज्ञान की कमी के कारण नहीं। ये नारद जी समर्थन कर रहे हैं कि व्यास देव आपका जो ये असंतुष्टि है इसका कारण ज्ञान का अभाव नहीं है, आप ज्ञान में परिपूर्ण हो, सुसंपन्न हो, महाभारत जैसा दिव्य काव्य ये इतिहास आपने रचना की जो सर्वात्म सर्वात्म सबके लिए सर्व अर्थ सबके सारे काम पूरे कर देगा, सर्व अर्थ, और उसको आपने परी अच्छी तरह से भ्रंश से उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो ये तो आपकी कमी नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, ये बात नहीं है। और आगे कहते हैं जिज्ञासुतम अधीतम च ब्रह्म यत्सनातनम तथापि सोचसि आत्मानाम अकृतार्थो एव प्रभो। इस श्लोक में प्रभु संबोधन करके नारद जी कह रहे हैं अपने शिष्य व्यास को, ये स्वामी प्रभुपाद ने लिखा है सर प्रभुपाद ने प्रभु के लिए लिखा है सर, और ये नारद पहले ऐसे गुरु है जो अपने शिष्य को प्रभु संबोधन कर रहे हैं, क्या इसका भाव होना चाहिए? सीधा भाव ऐसा है कि गुरु एक महान सेवा है, शिष्य को संपन्न करके शिक्षित दीक्षित करके भगवान के चरणों में अर्पण करने की, जैसे माता पिता की सेवा है बच्चों को शिक्षा संपन्न करके समाज में प्रतिष्ठित करके भगवान की भक्ति में लगाएं, ये माता पिता की सेवा है, वो वैसे भी गुरु को सेव्य भगवान कहते हैं, जो वो सेवा करता है और सेवा सिखाता है। तो व्यास देव को प्रभु संबोधन करना नारद जी का गुरु परंपरा की जो कर्तव्य है उसके पालन को सिखा रहे हैं। और इसी परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज अपने शिष्यों को प्रभु कहते थे, और श्री प्रभुपाद ने इस परंपरा में अपने शिष्य को बुलाते थे तो प्रभु बोलते थे। प्रभुपाद की भाषा में कभी भी जैसे सामान्य लोग कहते ये मेरे चेला है ऐसे कभी नहीं कह सकूं, दे आर माई स्टूडेंट्स। प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए ये मेरे स्टूडेंट है ऐसा कहा करते थे। तो इससे भाव ये आता है कि गुरु बहुत बड़ी सेवा का कार्य है, सेवा करने का कार्य है, सेवा लेने का कार्य नहीं है। सेवा जो गुरु को दी जाती है वो भगवान के लिए है, लेकिन वो जो सेवा करते हैं वो उसका धर्म है। जो भी सेवा गुरुजी की जाती है वो गुरुजी अपने लिए नहीं लेते हैं, वो अपने गुरुजियों के द्वारा भगवान तक पहुंचाए ये उनका धर्म है। एक बहुत बड़ा विद्वान दक्षिण भारत का तांत्रिक दिल्ली में मंदिर में, मंदिर जहां था उस वक्त में मंदिर बना हुआ नहीं था, जो जगह थी उसमें आया और देखा प्रभुपाद जी की गुरु पूजा हो रही थी, तो सभी गा रहे थे श्री गुरु चरण पद्मा, तो प्रभुपाद जी भी गा रहे थे। बोले हम इसकी पूजा करके इसलिए के लिए गा रहे हैं, ये अपने गुरु के लिए गा रहा है। बोला फिर ये सही गुरु है। जिसने कहा श्रीला प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद का श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बोला, तो शिशु ने कहा आप श्रीला प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? बोला मेरा अपना प्रभुपाद है, आपका प्रभुपाद है, मेरा प्रभुपाद है, तो मैं अपने प्रभुपाद की जय कह रहा हूं, मैं अपने गुरु की जय बोल रहा हूं। एक बार एयरपोर्ट के ऊपर बहुत रश हो गई तो अनाउंसमेंट किया कि सारे भक्त इस तरफ आ जाएं, तो प्रभुपाद भी उसी तरफ जाने लगे। प्रभुपाद आपने बोला क्या मैं भक्त नहीं हूं? क्या मैं भक्त नहीं हूं क्या? आप ऐसे कह रहे हो तो वो तो सामान्य भक्त का मतलब मैं भी भक्त हूं। तो ऐसा ये बहुत बड़ा भाव, और प्रभुपाद के अपने मुख से जब ये शब्द आता है, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप बहुत बड़े इस वक्त में प्रतिष्ठित जॉर्ज हैरिसन एप्पल वाला जो पॉप सिंगर है उसके स्पिरिचुअल मास्टर हो, गुरु हो? प्रभुपाद बहुत समय शांत रहने के बाद बोला नो, नहीं, आई एम सर्वेंट ऑफ एवरीबडी, मैं सबका सेवक हूं, मैं सबका सेवक हूं। प्रभुपाद के ये शब्द इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि गुरु का कार्य सेवा है। और अभी आज तक इतिहास में ऐसा गुरु हुआ नहीं है जो शिष्यों के लिए रोटी बना के खिलाए भी, कपड़े पहनाना सिखाए भी जैसे मां बाप सिखाते हैं, और हर एक आचरण ऐसे सिखाए जैसे बच्चों को पेरेंट्स सिखाते हैं। ऐसा गुरु इतिहास में हुआ नहीं है जैसा प्रभुपाद है। इसलिए प्रभुपाद की कंपेरिजन किसी और से की नहीं जा सकती। असल ऐसे लोगों के लिए भोजन बनाते हैं जो संस्कार तो कोई है नहीं, हिप्पी है, न कोई उनकी परंपरा है, न संस्कार है, न कोई वैदिक कल्चर से आए हुए हैं, और उनके लिए प्रेम से भोजन बना के उनको खिलाना, और जैसे बच्चों के लिए सेवा करते हैं इस तरीके से बैठ के उनको शिक्षा देना। और पहले दिनों में तो रोज सुबह क्लास, शाम क्लास प्रभुपाद ही देते थे और कोई था नहीं। तो ये जो सेवा है, अब तो गुरु, इसलिए गुरु की परिभाषा क्या है भगवद गीता में? शिष्यस्ते हम सादी मां, मुझे शिक्षा दीजिए। गुरु का यहां क्या कर रहा है नारद? कोई मंत्र दे रहा है क्या व्यास देव को? नारद कोई मंत्र दे रहा है व्यास देव को? नहीं। श्री कृष्ण ने क्या मंत्र दिया है अर्जुन को? नहीं। क्या दिया? शिक्षा दी। ये बहुत बड़ा भारी भाव है इसमें। ये जो मंत्र वाले डुगडुगी गुरु जो चल रहे हैं ये सब ड्रामा है। फिर वापस गुरु मिलता ही नहीं है। बहुत बड़े हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, कहते हैं कल गुरुजी मंत्र देंगे कान में और नारियल लेके आना। लोग नारियल लेके लाइन में खड़े होते हैं और गुरुजी बोर्ड के ऊपर मंत्र लिख लेते हैं, बोले इनमें से जो आपको चाहिए वो ले जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो ले जाओ। बोले महाराज आपको ना, तो हमारे क्या जरूरत जपने की, हम तो पहले से ही परिपूर्ण है, भगवान है, तो फिर उसका फायदा क्या, आप तो महाराज जपते। और फिर वो गुरु आपस, हम तो इसको बोलते हैं हमारी भाषा में, कैंप में आई की ऑपरेशन करते हैं ना, कभी कोई डॉक्टर कलकत्ता से आता है, कोई मुंबई से आता है, और वो सब सीखने वाले होते हैं, और किसी की आंख के ऑपरेशन करके वापस जाते हैं, वो डॉक्टर तो उसको कभी फिर वापस मिलेगा ही नहीं, और दूसरा कोई आंख खराब हो ठीक हो उसका भाग्य है। तो ये तो इस तरीके से सारे ऑपरेशन करके नारियल लेके चले जाते हैं, फिर शिक्षा कौन देगा, शिक्षा कौन देगा। तो मुख्य इसलिए अपनी परंपरा में शिक्षा की प्रणाली को महत्व ज्यादा दिया गया, बहुत ज्यादा महत्व शिक्षा की प्रणाली का है। ये चार पांच हमारी परंपरा के गुरु में, इसमें दो तो कम से कम सीधे से शिक्षा वाले, जगन्नाथ बाबा जी शिक्षा गुरु है भक्ति विनोद के, और गौर किशोरदास महाराज के भक्ति विनोद जी शिक्षा गुरु है, दीक्षा नहीं। ये प्रभु शब्द बहुत बड़ा भारी शब्द है असल में, और जिज्ञासुतम अधितम, आपकी जिज्ञासा और आपका अध्ययन, आपका शास्त्रों का अध्ययन दोनों, और उसमें आपने क्या किया है, ब्रह्म यत तत् सनातनम, सनातन ब्रह्म, इसको श्री प्रभुपाद ने आखिर सनातन ब्रह्म का मतलब भगवान के ज्योतिर्मय प्रकाशमय अक्षर ब्रह्म, उसका तो आपने वेदांत सूत्र में बहुत वर्णन किया है, तथापि उसके बाद भी सोचसी, आप अभी दिशा चिंता कर रहे हो, सोचसी का मतलब शोक करना, शोक किसके ऊपर करते हैं, कोई चीज गुजर गई हाथ से निकल गई अभी है नहीं, शोक आप शोक कर रहे हो। आत्मानम अकर्ता अर्थ एव प्रभु, अपने आप को समझते हो मैंने कुछ भी नहीं किया है, और इतना कुछ किया है फिर भी आप अपने आप को समझते हो मैंने कुछ भी नहीं किया है, महाभारत का आपने रचना कर दिया, अपने वेदांत सूत्र में ब्रह्म तत्व को तो बहुत विस्तार से अच्छी तरह से अध्ययन करके समझा दिया, और इतने जिज्ञासा की है, फिर भी आप अपने आप को समझते हो मैंने कुछ भी नहीं किया, अकर्तारम कुछ भी अकर्ता अर्थ हो, अरे इतना सारा किया अपने आप को समझते हो मैं कुछ भी नहीं किया है। ये एक और बहुत सुंदर शैली है, पहले उनके अच्छे गुणों के, दो अच्छे गुणों का वर्णन कर दिया, आपकी बड़ी अच्छी महाभारत, आपका कुल बहुत बड़ा, आपका ब्रह्म सूत्र बहुत बड़ा, ये ब्रह्म जिज्ञासा का, ये जो ब्रह्म शब्द है ब्रह्म तत् सनातनम, ये है ब्रह्म सूत्र की बात, वेदांत सूत्र की बात, ये तो आपने दोनों बहुत बड़े काम किए, बहुत महान है, फिर भी आपके अंदर कमी क्यों है, ये ऐसा प्रश्न पूछने की शैली है। नारद जी जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं दूसरे स्कंद भागवत में कि पिताजी सृष्टि करते तो आप हो, ये तो पूरा ब्रह्मांड आपके हथेली के ऊपर जैसे आमले का फल पड़ा है ऐसे फड़े, अखरूट का आमले का फल पड़ा है ऐसे लगता है, फिर भी आप किसका ध्यान करते हो, ये थोड़ा मुझे संदेह है भाई, और कोई है क्या जिसका आप ध्यान करते हो। तो पूछने की शैली बहुत बड़ी बुद्धिमती वाली होनी चाहिए, तो आप इतने बड़े विद्वान, आपने महाभारत लिखा, आपने वेदांत सूत्र लिखा, फिर भी आपके अंदर कुछ ये चिंता है, ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे क्यों है प्रभु, हे प्रभु का मतलब अभी कौन सी सेवा मेरी रह गई जो मैं करूं आपकी, प्रभु का मतलब है जैसे हम कहते प्रभु कैसे सेवा करें, अब स्वामी हो हम कैसे सेवा करें, तो ये हम अभी कौन सी सेवा रह गई। और इसमें श्री प्रभुपाद ब्रह्म सनातनम को लिखा है, ब्रह्म सूत्र की रचना करना, जो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र ये वेदव्यास की अंतिम रचना थी नारद से मिलने से पहले की। अब आगे वाले श्लोक को देखिए, पूरा हो गया पांचवा श्लोक है ना, ये तो नारद जी ने उनकी प्रशंसा ही की है, अब कुछ बोला नहीं है, तब व्यासदेव बोलना शुरू करेंगे, ऐसा व्यास है ना। व्यासोवाच असत्य एव मे सर्वमिदं तव्योक्तम्। तथापि नात्मा परितुष्यति मे। तन्मूलम् अव्यक्तमगाध बोधम्। पृच्छामहे त्वामात्मभात्मभूतम्। व्यास जी कहते हैं अस्त्य एव मैं सर्वम इदम त्वयोक्तम, जो कुछ आपने कहा यह सत्य है, मैं मानता हूं, मैंने ये काम तो किया है, वेदांत सूत्र लिखा, महाभारत लिखा, अस्ति एव मे मेरे द्वारा सर्वम इदम जो कुछ आपने कहा तव्योक्तम, आपने जो बोला वो सब सत्य है। तथापि फिर भी नात्मा परितुष्यति, मेरा अंदर में मन संतुष्ट नहीं है, आत्मा परितुष्यति पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो मानो कि नारद जी के मैं क्या करूं, पहले एक आगे एक भाव ऐसा आया है, अभी आगे आएगा, तो मैं क्या करूं, तो बोलते तन मूलम, उसका मूल क्या है, उसका कारण क्या है मुझे पता नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं अंदर में, उसका कारण मुझे भी पता नहीं, आप जो कहते हैं ये तो मैंने कर ही लिया, फिर क्या कारण है मुझे पता नहीं लग रहा है। तब कहते हैं आप अव्यक्तम अगाध बोध, लेकिन आपको जो चीजें सामने नहीं है, अव्यक्त का मतलब जो सामने नहीं है, जो रहस्यमय है, मिस्टिक है, उनका अगाध बोध है। अगाध बोध का मतलब आप उसको अंदर बाहर से गहराई से अच्छी तरह से जानते हो, और अगाध बोध हो इसलिए परीक्षामी मैं आपसे पूछता हूं, प्रकृष्टेन रूपेन इच्छा महे त्वम आपसे, और क्या विशेषण दे रहा नारद का, आत्मभू आत्मभूतम, आत्मभू आत्मभूतम, आत्मभू का मतलब आप किसी सामान्य माता पिता के औलाद नहीं हो भाई, किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए हो नारद जी, आप तो आत्मभू ब्रह्मा के पुत्र हो, आत्मभू का भू का मतलब अपने आप प्रकट ब्रह्मा जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए हो, और आपको तो अगाध बोध है, तो पूछना किससे चाहिए, ऐसे जब अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से तो कहते हैं आपके अलावा और कोई मेरे को इस स्थिति से निकाल नहीं सकता है, न व्यास देव निकाल सकता है, न भीष्म देव निकाल सकता है, आप ही, आपके अलावा और किसी कोई इस स्थिति से मुझे नहीं निकाल सकता है। तो यहां व्यास देव मानता है कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी मेरे कारण को नहीं जानता हूं कि मैं क्यों इतना असंतुष्ट हूं, आप अगाध बोध हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप कृपा करके मैं आपसे पूछा हूं क्या इसका कारण क्या है। आगे वाले इस श्लोक में श्री प्रभुपाद का तात्पर्य मुख्य रूप से फिर वह है कि सारा संसार शरीर और आत्मा के स्तर के ऊपर, शरीर और मन के स्तर के ऊपर काम करता है, और मन और शरीर के स्तर के ऊपर काम करने वालों का को कभी संतुष्टि नहीं होती है। तात्पर्य में दो बातें लिखी हैं कि जो आदमी मन और शरीर के स्तर का ही काम करता है उसको इस संसार में कभी संतुष्टि नहीं होती। जैसे सुख की परिभाषा कई बोलते, एक सुख शरीर के स्तर का होता है जैसे इंद्रियों का सुख है, एक सुख मन के स्तर का होता है, जैसे कुछ लोग हैं ऐसे शरीर के भोग में शौक नहीं है लेकिन खेल कूद में बहुत, जो बैठे बैठे खेलते रहते हैं, बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग देखे हैं मैंने, वो अखबार के अंदर से वो टुकड़ा निकालते हैं जिसके अंदर पजल होता है, वो बैठ के लकीरें निकालते हैं, बैठे लकीरें निकालते, घंटों भर के बैठे लकीरें निकालते, मिलेगा क्या पता नहीं, वो फ्लाइट में कभी जाते हैं देखते हैं फर्स्ट रो में सारे एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं और करते क्या है मोबाइल या वो खोल के और गेम खेलते हैं बच्चों वाले ऐसे ऐसे करके गेम खोलते हैं ये करते देखते हैं कि ये सब ये क्या है ये मन की संतुष्टि के लिए चिंता से थोड़ी देर दूर होने के लिए वो उस गेम में लगे होते हैं और कोई बैठ के काव्य लिखते बैठते हैं कुछ तो ये शरीर और मन के कार्यों में सब एक शरीर की खुशी है मन के उस तक और इंटेलेक्चुअल खुशी क्या है भाई अच्छा कोई काव्य लिख दिया भाई कोई शायरी कर दी कोई बहुत अच्छा उपन्यास लिख दिया ये उस संसार में खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है उनको शौक ही नहीं है और कोई साइंटिस्ट ले लो तो खाना पीना नहीं कोई काम नहीं सारा दिन उसी में लगे हुए इंटेलेक्चुअल खुशी लेकिन ये तीनों खुशियां जो है ये आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती है क्योंकि ये तीनों भौतिक स्तर की चीजें हैं तो आत्मा की संतुष्टि इनसे नहीं हो पाएगी ये मुख्य उद्देश्य चाहे शरीर इसलिए प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर जो पहला तात्पर्य है कि ये शब्द ध्वनि जो है हरे कृष्ण महामंत्र की ये ब्रह्म शब्द शरीर के स्तर से मन के स्तर से और इंटेलेक्चुअल बुद्धि के स्तर से ऊपर है ये आत्मा के स्तर के हैं ये आत्मा के स्तर इनका प्रभाव आत्मा के अंदर लहरें पैदा करता है और आत्मा के आनंद का अनुभव कराता है परिभाषा कुछ भी हो सकती है कभी शरीर का सुख जो होता है वो दुख में परिवर्तित होता जाएगा आज गर्मी बाहर लग रही है एसी लगा तो सुख हो गया तो शरीर का सुख हमेशा दुख और सुख शरीर में आते जाते रहते हैं मन में शांति और अशांति चलती रहती है कभी मन शांत है कभी अशांत है अपने पसंद की चीज मिल गई तो मन शांत है पसंद की नहीं मिली तो अशांत है लेकिन आत्मा में केवल आनंद है और आनंद आत्मा में होता ही नहीं तो शरीर का सुख शरीर के स्तर का है शांति मन के स्तर की है और आनंद आत्मा के स्तर का है जो सुख है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है शांति अशांति हो सकती है लेकिन आनंद आनंद हो ही नहीं सकता है वो तो केवल बढ़ेगा इसलिए आत्मा के आनंद का एक प्रवचन प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा रक्षते आत्मा की रक्षा करनी चाहिए शरीर की रक्षा करने से क्या होगा शरीर आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए का अर्थ है आत्मा को वापस भगवान के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमती रहेगी ऐसा मानव जन्म का मौका फिर तो नहीं मिलेगा और प्रभुपाद जी क्योंकि पाश्चात्य देशों में प्रवचन कर रहे थे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में कह रहे थे ये तो हजरत ईसा जीसस क्राइस्ट ने कहा है If you lose your soul and gain the world, what is the gain? पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन अपनी आत्मा को खो दो तो लाभ क्या हुआ इस जन्म में प्रधानमंत्री बन गए और दूसरे जन्म में कुत्ते बन गए तो लाभ क्या हुआ इसकी परिभाषा ये है तो उसका लाभ हुआ क्या श्रील प्रभुपाद का यह कारण सबके दुनिया के अंदर दुख का कारण है शरीर और मन के स्तर तक ही लोग काम करते हैं आत्मा की संतुष्टि का जो कार्य है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है और इसलिए फिर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का एक मुख्य सिद्धांत यह है जितने भी विद्वान इस संसार के अंदर है उनके पास भौतिक ज्ञान है लेकिन उनसे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी इसलिए नारद जैसे किसी आध्यात्मिक अगाध बोध के शरण में जाकर आत्मसंतुष्टि का मार्ग पूछ लेना चाहिए आगे वाला श्लोक आगे व्यासदेव कहते हैं
सवै भवान वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यद् पुरुषः पुराणः परावरेषु मनस्यैव विश्वाम् सृजत्यवत्यतिगुणैरसङ्गः
आगे कहते हैं, इसलिए सवई भवान वेद समस्त गुह्यम, आप वेदों के अंदर जो सबसे गुह्य गुप्त रहस्यमय उसको जानते हैं, वेद आप उसको जानते हैं। हे नारद जी, आप अगाध बोध हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप वेदों के सारे रहस्य को जानते हैं। कैसे जानता हूं मैं, ऐसी कौन सी मुझ में विशेषता है मैं जानता हूं, अथवा कौन जान सकता है? तब कहते हैं उपासितो यद पुरुष पुराणम, जो पुराण पुरुष की उपासना करता है। पुराण पुरुष की उपासना इसी भागवत के सातवें अध्याय में आएगा, पहले स्कंद में व्यास देव ने समाधि में पुराण पुरुष को देखा, पुराण पुरुष को देखा लिखा आएगा सातवें अध्याय के मेरे ख्याल में पांचवें या चौथे श्लोक में आएगा। व्यास देव में ध्यान में पुराण पुरुष को देखा, और वो पुराण पुरुष कौन है जो वो नवें दसवें श्लोक में आएगा, वो अधोक्षजे है, वो इंद्रियों से परे है। और फिर आएगा भागवत की रचना की, जिसके द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति तत्पर तत्काल प्रकट हो जाएगी, इसका मतलब वो पुराण पुरुष श्री कृष्ण है। इस सातवें अध्याय में ये सब तीन चार पांच छह सात श्लोक में इन सब का वर्णन है। तो आपको ये पता सब कैसे है, क्योंकि आप पुराण पुरुष, पुराण पुरुष का मतलब अनादिर आदिर गोविंद, पुराण का मतलब उससे पहले कोई नहीं हो, पुराण का मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराना मतलब जिससे पहले कोई नहीं हो, और पुरुष का मतलब भोक्ता भगवान, परम पुरुष भगवान, पुरुषम पुराणम परम पुरुष भगवान, उसका आप उपासित है, उपासित तो उसकी आप उपासना करते हैं अथवा उनके पास बैठते हैं, आप कभी भी जाएं तो उसके पास जा सकते हैं। और वो भगवान कैसे हैं, अब भगवान का विशेषण है, जो परम पुरुष है, पुरुष पुराण है, वो कैसा है? परावरेशो मनस्यैव विश्वम सृजति अवत्यत गुणैर असंगः, वो भगवान क्या करता है? पर और अवर, पर और अवर, कल हमने पर और अवर का क्या अर्थ देखा था, कल भी पर और अवर आया था, क्या था? पास्ट एंड फ्यूचर। यहां पर और अवर का अर्थ है काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट। काज काज क्या होता है, इस सृष्टि का कारण कौन है? भगवान। इफेक्ट क्या है? सृष्टि। तो इन दोनों का क्या करते हैं? सृष्टि का सर्जन करते हैं सृज्य, और उसका फिर क्या करते हैं? अवति इति, और उसकी सृष्टि को पैदा भी करते हैं और इसको प्रलय भी करते हैं। सृजति सर्जन करना, पैदा करना, अवति उसको नाश भी करते हैं, और रक्षति किसको? काज को, अवति। प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत इसको स्पष्ट कर दिया है, वो भगवान जिसकी आप उपासना करते हो वो तीनों गुणों से तो परे है, गुणेर असंग, गुणों से असंग है, गुणों से उसको ही संग नहीं है, आध्यात्मिक जगत की रक्षा करता है और भौतिक जगत की सृष्टि और विनाश करता है। ये जो पर और अवर का अर्थ लिखा कि आध्यात्मिक जगत की रक्षा करते हैं सदा नित्य उसको पालन कर, और भौतिक जगत की सृष्टि भी करते हैं और फिर विनाश भी करते हैं, थोड़े समय के लिए ये दुनिया बनती है फिर नाश हो जाती। तो ये ऐसे भगवान किए आप उपासना करते हैं, इसका मतलब आध्यात्मिक जगत को भी जानता है आप जानते हैं, और भौतिक जगत को भी जानते हैं, और इन दोनों के कारण को भी जानते हैं। ये जो व्यास देव कह रहे हैं कि नारद जी आप अगाध बोध हैं, आप वेद के समस्त गुह्य, आपको सारे रहस्य का पता है, क्योंकि आप पूर्ण पुरुष भगवान पुरातन आदि पुरुष गोविंद की उपासना करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत को रक्षित करता है, सदा के लिए मेंटेन करता है, और भौतिक जगत की सृष्टि और उसकी प्रलय भी करता है। इसका अर्थ है कि आप दोनों जगतों के कारण को भी जानते हो और कार्य को भी जानते हो। कारण भगवान है और कार्य जगत है। तो आप सब ये जानते हो। श्री प्रभुपाद का यहां अर्थ एक लाइन में बहुत एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, कि जो 100% भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसके पास सारा ज्ञान अपने आप आ जाएगा। 100% भगवान की सेवा में लगा है उसके पास सब ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। असल में एक और श्लोक सदा उद्धृत करते हैं प्रभुपाद जी, कौन सा, जिसको गुरु और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है उसके हृदय में वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। यस्य देव पराभक्ति यथा देव तथा गुरु तस्य एव प्रकाशन्ते महात्मनः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, उसके पास तो उनको तो सब पता है। जब देखेंगे कि जीवात्मा पूर्ण रूप से मेरा शरणागत है, मेरी सेवा कर रहा है, तो जो उसको जरूरत है वो सब बता देते हैं, कहीं बाहर से बताने की जरूरत नहीं है उनको। और जो प्रचार कर रहे हैं उनको जीवन में ऐसे अनुभव होंगे, तो दास को भी ये कई बार का ऐसा अनुभव है, लोग कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो कभी हमारी नजर से गुजरा हुआ नहीं होता है शास्त्र में, लेकिन उस वक्त में ऐसा उत्तर अंदर से निकलता है जो हम भी संतुष्ट होते हैं, सुनने वाला भी संतुष्ट हो जाता है। और कुछ 10-12 साल के बाद, 5-7 साल के बाद वही उत्तर हमको शास्त्र में मिलता है। तो इसका अर्थ है कि अंदर से परमात्मा, और उसके अलावा उसी श्लोक को कई बार दोबारा बोलते समय उसका अर्थ ही दूसरा हो जाता है, उसका भाव ही दूसरा हो जाता है। तो अंदर से हमेशा, इसके बाद दूसरे लाइन में प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो 100% भगवान का आश्रित है वो तो ज्ञान का चिन्ह हो जाएगा, एम्ब्लेम ऑफ द नॉलेज, वो ज्ञान का तो चिन्ह हो जाएगा। ऐसा भक्त जो भक्ति में सिद्धि को प्राप्त करता है उसकी सिद्धि भगवान जैसी हो जाती है। क्वालिफिकेशन की ये लाइन अंग्रेजी में लिखी है, आप पढ़ के देखिए, बड़ी अद्भुत अंग्रेजी की लाइन है। सच ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इन फुल परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस इज आल्सो परफेक्ट बाय क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो भगवान की क्या क्या क्वालिफिकेशन है सब कुछ जानते हैं, तो वो भक्त भी सब कुछ जानने लग जाएगा अपने आप नहीं, लेकिन भगवान उसको हर चीज समय के ऊपर अंदर से प्रेरणा देके बताते रहते हैं। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, चैत्य गुरु। वैसे सबको थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं, आप जब सब्जी में नमक डालते हैं कितना डालना है कौन बताता है, ऐसे करके ऐसे चिपटी में डालते कौन बताता है कि इतना ही डालो ये पूरा हो जाएगा। ये भी काम परमात्मा ही कहते, इतना ही डालना, ज्यादा मत डालना, छोटे से छोटे काम को भी वही संभालता है। ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। तो ये, और फिर इसके बाद वो क्या प्राप्ति उसको हो जाती है, बोलो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो कहीं भी जाए, आप तो नारद जी कहीं भी जा सकते हो। इसके बाद प्रभुपाद ने अष्ट सिद्धियों की बात लिखी है और बोला ये अष्ट सिद्धियां तो भक्त के लिए कुछ भी नहीं है। योगी अष्ट सिद्धियों के लिए जीवन लगा देते हैं और भक्त के लिए ये तुच्छ कुछ भी नहीं है, इनसे ज्यादा उनको पता होता है। वो ये सारी सिद्धियां इस भौतिक जगत में आपको घुमाती हैं, लेकिन नारद तो सीधा वैकुंठ चला जाता है, ये अष्ट सिद्धियों वाला वैकुंठ तो नहीं जा सकता। तो इसलिए लिखा ये अष्ट सिद्धियां जो संसार की हैं, वेरी लिटिल ऑफ दी गॉडली ऑप्युलेंस, ये तो भगवान का बहुत छोटी चीज है। डिवोटी लाइक नारद कैन एक्ट वंडरफुली बाय हिज स्पिरिचुअल परफेक्शन। लेकिन फिर एक लाइन लिख के प्रभुपाद ने सावधान कर दिया, भले नारद सब कुछ जानता है लेकिन भगवान के समान नहीं है, भगवान फिर भी भगवान है। इसलिए प्रभुपाद से जब कोई पूछते हैं क्या आप सब कुछ जानते हैं, बोला नहीं, उतना ही जानता हूं जितना भगवान मुझसे जन्माते हैं, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं ये परफेक्ट है, मैं परफेक्ट नहीं हूं। आर यू परफेक्ट प्रभुपाद, आप क्या पूर्ण है, शुद्ध? नहीं, नो, आई एम नॉट परफेक्ट, आई मे नॉट बी परफेक्ट, बट व्हाट आई एम गिविंग यू इज परफेक्ट। जो मैं आपको दे रहा हूं ये सत्य है, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। मेरे से त्रुटि हो सकती है लेकिन भगवान से त्रुटि नहीं हो सकती। तो ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। तो यहां नारद की विशेषता ये बताई है कि आप अगाध बोध हैं, आप वेद के रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आप भगवान के शरणागत हैं पूर्ण रूप से, और उस भगवान के शरणागत है जो आध्यात्मिक जगत की रक्षा करता है और भौतिक जगत की सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं, और जो तीनों गुणों से परे हैं, और क्योंकि आप उनकी भक्ति करते हैं इसलिए आप भी तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, इसलिए आप मेरे इस असंतुष्टि के कारण को, उसके मूल को, और क्या मूल कारण है उसको आप कृपा करके बताइए। अब एक और विशेषण नारद जी का बता रहे हैं। अब व्यास जी कह रहे हैं, त्वं प्रियतम अरकैव त्रिलोकिम अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतै सनातस्य मे न्यूनम अलम विचक्षव। नारद जी आप पर्यटन करते हैं, घूमते रहते हैं, बहुत अच्छे ट्रेवलर हैं। पर्यटन का मतलब ट्रेवलर है, आप स्पेस ट्रेवलर हैं, आकाश में कहां कहीं भी घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं? अर्कैव, सूर्य की तरह, त्रिलोकन, तीनों लोकों में। नारद आप तीनों लोकों में ऐसे जाते हैं जैसे सूर्य जाते हैं, कहते सूर्य को कोई नहीं रोकता, कहीं भी सूर्य पहुंच जाता है। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों को प्रकाशित करते रहते हैं, जैसे सूर्य प्रकाशित करते हैं ऐसे आप भी मेरे को जो अंदर में अंधकार है उसको प्रकाशित कर लीजिए। सूर्य से प्रकाश की परिभा है। और दूसरा कहते हैं अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, और वायु जैसे कहीं भी पहुंच जाएगी ऐसे आप मेरे हृदय में चले आइए। वायु को कोई रोकता नहीं है, कहीं भी खाली जगह होगी वायु अपने आप पहुंच जाएगी। तो वायु की तरह आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और सूर्य की तरह आप कहीं भी जा सकते हैं तीनों लोकों में। तो आप कैसे हैं? आत्म साक्षी, जैसे परमात्मा हृदय में साक्षी है ना, यहां उदाहरण दिया जैसे परमात्मा हृदय में साक्षी है ना। अब इसका अर्थ यह निकला कि जैसे परमात्मा हृदय में साक्षी है ना, ऐसे गुरु उसका बाहर का रूप होता है। तो आप बाहर का रूप हैं परमात्मा का, ये हमारी ये फिलॉसफी यही है ना, अंदर से भगवान परमात्मा के रूप से प्रेरणा देता है और बाहर से गुरु के रूप से उसी चीज को सिखाता है। तो ये जो दूसरा है कि आप कैसे हैं, साक्षी हैं परमात्मा की तरह परा, और फिर अपने लिए कहते हैं ब्रह्मणी धर्मतो वर्त ही, मैंने तो अच्छी तरह से धर्म के व्रतों का पालन किया है, धर्मों के व्रतों का पालन किया है। इसका मतलब मैंने तपस्या की है, मैंने वेद पढ़ा है, मैंने यज्ञ किया है, मैंने जितना अच्छे से अच्छा कार्य करना है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, वो सब मैंने किया है। परावरे ब्रह्मणी, परम सत्य के विषय में जो पहले का परावरे, यहां भी परावरे वही है, वहां परावरे था आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, यहां परावरे है कारण, कार्य और कारण, दोनों का अर्थ फिर भी एक ही निकलेगा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से ही भौतिक जगत उसकी छाया के रूप में प्रकट होता है और दोनों का कारण भगवान है। आज थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, अभी और जितना और जाएगा और गहरा फिलोसॉफिकल होता जाएगा। हरे कृष्णा। अब कहते हैं आप क्या कीजिए, अपनी बात कहते हैं, मैं तो ब्रह्म में धर्म के व्रत का पालन करते हुए सनातस्य अच्छी तरह से ध्यान में मगन रहा हूं। अपनी बात करते हैं, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, मैंने व्रत का दृढ़ व्रत धारण किए हैं, धर्म के पालन किए हैं, नियमों का पालन किया है, और सनातस्य का मतलब ब्रह्म का ध्यान किया है, फिर भी कुछ कमी रह गई है, न्यूनम अलम, क्या करूं? आप क्या करो, विचक्ष्वे, उसको देख लो कहां है, क्योंकि आप मेरे हृदय में आइए और आके देखिए कमी क्या है, क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे पता नहीं लग रहा है, और मैंने सब प्रयास कर चुका पता लगाने का। और श्रील प्रभुपाद के इसमें है कि दिव्य साक्षात्कार के लिए कुछ पुण्य कर्म भी जरूरी होते हैं, ठाकुर जी की पूजा भी जरूरी है, दान देना भी जरूरी है, दया करना भी जरूरी है, अहिंसा भी जरूरी है, और शास्त्र पढ़ना भी जरूरी है। अगर जीवन में ये सब काम करेगा तो आस्ते आस्ते आध्यात्मिक, ये मतलब व्यासदेव ने क्या किया, ये सब कुछ किया। व्यासदेव ने क्या किया, ठाकुर जी की पूजा की, पुण्य कार्य किए, क्या पुण्य कार्य किया, इतने सारे शास्त्र लोगों के भले के लिए लिख दिए, दया, उसके अंदर दया थी तब सबका भला किया, और सारे शास्त्रों को अध्ययन किया, नियम के पालन किए, तो ये सब वो आध्यात्मिक अनुभव में साधन है। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य। अब व्यास नारद जी सीधा सा पहले कह देंगे, उसमें देर करते ही नहीं, पहले सिद्धांत बता रहे हैं नारद जी। श्री नारद वाच, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येन वयासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। नारद जी कहते हैं भवत, आपने अनुदित प्रायम, प्राया वर्णन नहीं किया है किसका, यशो भगवतो अमलम, जो अमल भक्त है, अमल भगवतो, जो भगवान है उसके महिमा नहीं गाई है प्रायः आपने। आपने अपने सारे शास्त्रों में भगवान अमल मत का मतलब क्या, जिसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है, मल नहीं है, ऐसे अमल भगवान के गुणगान नहीं किया है। और यही गुणगान जब नहीं करते हैं, ये नए वसो न तुष्यता, इसके लिए आप संतुष्ट नहीं है। आपकी असंतुष्टि का कारण भगवान के गुणगान की कमी है। तो व्यासदेव ने कहा आप कैसे कहते हैं, मैंने तो महाभारत के अंदर बहुत अच्छा भगवान कृष्ण के गुणगान किया है। व्यासदेव कहते हैं आपने जरूर किया है, लेकिन ऐसे किया है कि भगवत गीता कोई नहीं पढ़ता है, महाभारत में बाकी सब पढ़ते हैं, किया बराबर है, लेकिन उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को इतना महत्व दे दिया है कि भगवान वाले रास्ते पे लोग कम जाएंगे। किया है, ऐसा नहीं वेदों के अंदर नहीं किया है, लेकिन इतना दूर दूर किया है और इतना थोड़ा किया है कि उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देगा। और फिर कहते हैं मन्ये तद दर्शनम, और ऐसा शास्त्र, ऐसा दर्शन, शास्त्रों को दर्शन कहते हैं वैसे जो, क्योंकि वो भगवान का दर्शन कराने का साधन है, वो दर्शन का मतलब फिलॉसफी, ऐसा दर्शन खिलम, खिलम का मतलब नीचे स्तर का, ये खिल का मतलब बहुत नीचे स्तर का, वो दर्शन कहलाता है जिसके अंदर भगवान के महिमा का वर्णन अधिक न हो। तो आपके असंतुष्टि का कारण प्रायः आपने भगवान के यश का वर्णन कम किया है, यही आपकी असंतुष्टि का कारण है। प्रायः आपके सारे शास्त्रों के अंदर क्या है वो अगले श्लोक में आएगा, और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद का है, लास्ट में लिखते हैं कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद वेदांत सूत्र का जो आथर है, जो उसको प्रकट करने वाला है, वो ही संतुष्ट नहीं है, तो उसके ऊपर समय बेरा गंवाने के बाद दूसरे कैसे संतुष्ट होंगे। ये एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, जो वेदांत सूत्र लिखने वाला ही उसको पढ़ने के बाद संतुष्ट नहीं है, तो उसको पढ़ने वाले कैसे संतुष्ट होंगे। और इससे ऊपर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रायः भगवान के ब्रह्म और परमात्मा के विषय में हो सकता है कि वर्णन किया भी हो, लेकिन भगवत तत्व के वर्णन करने में आपने कंजूसी की। ब्रह्म का बहुत वर्णन किया है और इसका आप प्रभाव देख सकते हैं भारत के आध्यात्मिक जगत में प्राय आपको 90% लोग ब्रह्म ब्रह्म करने वाले लोगेंगे, असल में सब है ब्रह्म में, लेकिन कहते हैं ब्रह्म है, असल में ब्रह्म में है सारे, लेकिन कहीं भी जाओगे ब्रह्म ब्रह्म करते हुए मिलेंगे, क्योंकि सारे शास्त्रों में है ही ब्रह्म, तो करें क्या। यही तो व्यास देव को नारद कह रहा है कि आपने ऐसा ब्रह्म को, इतना ब्रह्म को चढ़ाया है कि सारे ब्रह्म में पड़ जाएंगे, कोई ब्रह्म तक पहुंचता नहीं है, लेकिन सारे कहते हैं हम ब्रह्म में पहुंच गए, पहले से समझते हैं कि हम मुक्त हैं, भले चाय बिस्कुट खाते हो लेकिन कहेंगे हम मुक्त हैं। अपने आप को कहते हम तो पहले से ब्रह्म है, लेकिन अब थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, एक चाय का कप और बिस्कुट दीजिए, तो ये ब्रह्म की ये ब्रह्म का ब्रह्म है, इसको कहते हैं ब्रह्म का ब्रह्म। तो ये बहुत बड़ा समस्या है असल में। वो तो प्रभुपाद जी कीर्तन करने वाले के लिए लिखते हैं कि कीर्तन करते बहुत अच्छा गाते हा, 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 हा। और अरे गला खराब, गले में थोड़ा सा वो खराश हो रही, एक बीड़ी ला दो पीता हूं। तो ये सारे जो है ये बहुत बड़ी बात कहते हैं यहां पापा जी। यहां मुख्य रूप से लिखते हैं कि आपने ब्रह्म का इतना वर्णन किया है और उसके अंदर भगवान की महिमा, विशेष रूप से चार चीजें भगवान की जो है भगवत प्राप्ति के लिए जो हृदय को संतुष्ट करती हैं, वो चार चीजें हैं, भगवान का गुण रूप नाम और धाम। ये सब रसिकों ने निर्णय किया है कि भगवान हृदय में आनंद का फुहारा, आनंद का स्रोत खुल जाए, जो अवरुद्ध पड़ा है, जो रुका हुआ है, वो ऐसे खुल जाए, उसके लिए चार चीजें चाहिए, ललित लीला नाम रूप और धाम। इन चारों में भी धाम तो जब जाएंगे तब दर्शन होगा, रूप भी जब मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे, लीला भी कोई सुनाएगा तब सुनेंगे, नहीं तो पुस्तक लेके सत्वगुण में जाके पढ़ेंगे तब सुनेंगे, समझ में आएगा। कल बहुत भाग्यशाली तीन महात्माओं ने भागवत का सेट लिया, इसका मतलब कुछ परसेंटेज में सत्वगुण आया, और उनका उनका धन्यवाद करते हैं। और मदान जी उनका नाम बता दीजिए, कौन भाग्यशाली कल सीधा सत्वगुण में गए, तमो रजोगुण से लिफ्ट से ऊपर आ गए, क्यों कल सीढ़ी थी ना वो लिफ्ट से आए, बाकी तो हम भी सीढ़ी से गए। क्या है नाम थे? हाँ जी, दिनेश, वो भी अदृश्य है क्या? नहीं, एक तो यहां बैठे उन्होंने लिया था, राजेश जी ने लिया था, दो और भी थे कोई, तो बहुत अच्छा। अब लिखा है, क्या बात कर रहे थे, ये बीच में ऐसे आ गया। हाँ, धाम में जाएंगे तब दर्शन होंगे, रूप मंदिर में आएंगे, लीला कोई सुनाएगा तब, लेकिन नाम कहीं भी ले सकते हो। इसलिए चार वैष्णव संप्रदाय में प्राय कुछ लीलाओं का चिंतन करने वाले हैं, कुछ पूजा पाठ रूप का करने वाले हैं, लेकिन अपने पास मुख्य नाम है। देखें मध्य संप्रदाय में भगवान की पूजा प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत ज्यादा विधि विधान है, रामानुज संप्रदाय के ऊपर भी बहुत विधि विधान पूजा के हैं, तो ये रूप की उपासना हो गई। निम्बार्क में प्राय लीला का स्मरण है, अब स्मरण लीला का, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में प्रधान नाम है, लेकिन चारों ही परिपूर्ण है, लेकिन इन चारों में से जो सब सरलता से कर सकते हैं वो नाम है। तो इसलिए भागवत में दो बार, आपको कल भी एक परसों पढ़ाया था, इसमें पढ़ा था भागवत रूप इदम भागवत नाम पुराणम, भागवत में तो भगवान के नाम की ही महिमा है, भगवान के नाम की, भागवत नाम पुराणम दो बार आएगा भगवान के अवतारों के साथ, भगवान के अवतारों की महिमा है तो भगवान के नाम की महिमा है। अब एक और श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर ये तो पढ़ लिया, आठ नौ, नवा ना, अभी नवा ना, एक नौ पढ़ लो फिर हो गया आज का। यथा धर्माद्यश्चार्था मुने वर्यामुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। अब कहते हैं यथा जितना धर्म आद्यश्च अर्थ, आपने जितना धर्म अर्थ काम मोक्ष का मुनि हे व्यास देव वर्णन किया है, अनुकीर्तित उसकी जितनी महिमा गाई है उतनी न तथा उतनी नहीं गाई है वासुदेवस्य महिमा, भगवान वासुदेव की महिमा का उतना वर्णन नहीं किया जितना धर्म अर्थ काम मोक्ष का किया। तो प्रायः आप कहीं भी जाएंगे लोग तो यही बात बोलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं हमको करने, लेकिन करते दो हैं, कौन सा पहला छोड़ देते हैं, धर्म की जरूरत नहीं है अर्थ चाहिए, और बीच वाला काम चाहिए लेकिन मोक्ष की जरूरत नहीं है। तो दुनिया में सिर्फ अर्थ और काम का झगड़ा चल रहा है, अर्थ काम धर्म बोला ये आप महाराज कर लो। ये महाराज आप कर लो। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बीमार था, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, बोला कितना पैसा, बोला 50 रुपया, बोला 100 रुपया लो दवाई भी आप खाओ। ऐसा आप कहीं भी जाओ यही चल रहा है, मैं इसलिए आप कहीं जाओ किसी में, महाराज आप पाठ कर लेना, हम धंधे पे जा रहे हैं आप पाठ करके चले जाना, महाराज आप पूजा करके जा रहे हम काम पे जा रहे हैं, तो महाराज धर्म करे हम अर्थ कमाएंगे, महाराज आप मुक्त हो जाना हम काम, हम तो इच्छा पूरी करेंगे आप मुक्त हो जाओ, तो ये तो सब ऐसा चल रहा है। तो इस चारों की परिभाषा का कल वर्णन करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है और इसका स्वरूप क्या है भागवत में, और वासुदेव की कीर्ति कैसे गाई जाए, तो इसके आगे के श्लोकों का कल वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण।
प्रश्न कहां से, 10 बजे तो प्रश्न कहां से, साहब दरवाजे बंद, हरे कृष्ण, कोई है क्या? यही तो देवताओं के अमृत की कमी है कि वो पीने के बाद भी मरते हैं, थोड़ा जीते ज्यादा हैं अमृत पीने के बाद, देवताओं का अमृत पीने के बाद भी वो ऐसे अमर नहीं होते हैं जैसे भागवत का अमृत पीने से अमर होते, इसलिए भक्ति के अमृत का वर्णन है 12वें अध्याय में, ये धर्मामृतम यथोक्तम परिपासते, ये धर्म का अमृत जो है वो अमृत कैसा है, देखो क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम वैशंती, वो तो क्षीण पुण्य होगा तो मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, लेकिन धर्म का अमृत पिएंगे तो भगवत धाम जाएंगे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो धर्म वाला अमृत देवताओं ने पिया था, असुरों को नहीं मिला, क्योंकि दोनों को भौतिक जगत में झगड़ा चल रहा था, हमारे को तो भौतिक जगत से कुछ लेना नहीं, यहां तो सब कुछ देना है, भगवान की कथा को देना है और कुछ लेना नहीं है। कोई और प्रश्न है क्या? वो कौन सी है, ये तो मायापुर महात्म्य में सब लिखी हुई है, मायापुर परिक्रमा महात्म्य, उसमें दो दो चीजें हर संप्रदाय से ली है, कहीं से पूजा ली है, कहीं से निष्ठा ली है, अभी मेरे को ऐसे एग्जैक्टली कौन सी संप्रदाय से क्या लिया है ऐसे स्मृति में नहीं है, लेकिन वहां है ये मुझे मालूम है, उस वहां पुस्तक मायापुर परिक्रमा महात्म में देखेंगे तो मिल जाएगा, टेक्निकल प्रश्न है, इसको देखेंगे क्या क्या चीजें महाप्रभु ने हर एक वैष्णव संप्रदाय से ली। हरे कृष्ण।